الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار قالت تكسرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات أكل ودين أغلب لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتنقص الأيام لا تصلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قيل الأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله استغفر الله صدق الله العظيم میرے دوستو معتکفین حضرات اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں الحمدللہ آج 29واں روزہ ہے کچھ گھڑی کچھ گھنٹے کچھ دن باقی ہے ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ سکون کے ساتھ بیماریوں کے باوجود روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور بدن میں درد کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اب شکر کیسے کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ شکر کی دو قسمیں ہیں ایک تو زبانی شکر ہے زبان سے کہے اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہ تیرا شکر ہے حمد بھی شکر ہے اللہ کی حمد بیان کرتے رہے یہ شکر ہے اور بدنی شکر بھی ہے کہ ابھی کچھ دین باقی ہے ہو سکتا ہے کل کا دین ہو 30 روزے پورے ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اللہ کو زیادہ پتہ ہے وہ تو شام کو پتہ چلے گا مغرب میں کہ 30واں روزہ ہے یا نہیں خیر اللہ سے دعا کرے اللہ مزید ایک دین عطا فرمائے تو اب بقیہ گھڑی ہو بقیہ گھنٹے ہو یا بقیہ دین ہو جو بھی ہو اس میں اپنے بقیہ اعمال پورا کرے اگر قرآن پڑھنے کا باقی رہ گیا ہو ختم کرنے کا ختم کر لے جلدی جلدی اور اگر اس میں کوئی ذکر اللہ کوئی عبادت باقی ہو اس کو کر لے اس لیے کہ بہت جلد ابھی یہ جو قیمتی وقت ہے ختم ہو جائے گا پھر آئندہ سال رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا کیا معلوم اللہ پاک نے عمر دی نہیں دی अल्लाह हम सबको आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमावे, लंबी उम्र नसीब फरमावे, ताकि हम लोग खूब इबादत करें अपने जिंदगी में। तो जो एक फर्ज नमाज पर 70 नमाज का सवाब मिलता है, एक नफल नमाज पर एक फर्ज नमाज का सवाब मिलता है, वो जो अल्लाह की तरफ से फजीलत थी वो सब खत्म हो जाएगी जैसे ही चांद की खबर आई, खत्म। इसलिए कदर कर ले, अल्लाह का शुक्र कर ले। एक जबानी भी कर लिया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तक तो तूने तौफीक दी, अब बदन से भी करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और खूब दुआएं करे। दुआएं एक ऐसी चीज है जिससे जो बला उतर चुकी है अल्लाह उसको दूर करेगा, आइंदा कभी आने वाली है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको भी खत्म कर देता है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए खूब दुआ करे, माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए खूब दुआ करे। अल्लाह माँ बाप की दुआ को जाय नहीं करता, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं की कदर करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो नॉर्मल थे, फिर कुछ महीने के बाद कुछ बीमारी में, बच्चों की कुछ बीमारी लग जाती है, कुछ बीमारी की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ब्लाइंड हो गए, आंखों से देख नहीं सकते थे। अभी तो बच्चे हैं, 6 महीने के, कुछ महीनों के बच्चे हैं। माँ को बहुत फिक्र हुई, बच्चों की फिक्र माँ को ज्यादा होती है, छोटा हो या बड़ा बच्चा हो, कुछ हो जाए बेटे को बेटी को तो माँ को ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि बाप तो इंतकाल कर चुके थे, बच्चा तो यतीम था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो उनके वालिद साहब तो इंतकाल कर गए थे, तो ये तो यतीम बच्चा पैदा हुआ। इमाम बुखारी की बात कर रहा हूं मैं, जो मशहूर है सारी दुनिया में, सारी दुनिया में मशहूर है। कितने साल हो गए, 1300 साल हो गए, सारी दुनिया उनकी किताब पढ़ती है। उन्होंने खुद 90,000 स्टूडेंट को बुखारी शरीफ पढ़ाई है, 90,000 करीबन 1,00,000 उनके पास तो बुखारी पढ़ी है उनके खुद के पास। फिर उनकी बुखारी को लाखों लोगों ने, बिलियनों कई लोगों ने पढ़ी है। अरब भी पढ़ता है, अजम भी पढ़ता है, ये अरब तो थे नहीं, ये तो अजमी थे, अरबी में अरबी नहीं बोलते थे, अजम के थे। लेकिन क्या हुआ, वालिदा दुआ करती रही करती रही, हर नमाज के बाद रातों में उठकर दुआ करती थी, तहज्जुद में दुआ करती थी, ए अल्लाह मेरी बेटे की आंखें चली गई, अब इसकी जिंदगी में क्या होगा, उसके वालिद साहब ने कितने पैसे रखे हैं कि मेरा बेटा पैदा अगर हो, बेटा अगर हो तो उसको तालीम देना, कैसे तालीम दूं, इसलिए आंख के बगैर तो पढ़ नहीं सकता है। मां को बहुत फिक्र हुई, रो रो कर दुआ करती थी। मालूम होता है कि वालिदैन की दुआएं कबूल होती है। बहुत दुआएं की, एक मर्तबा ख्वाब में उनकी दुआ ले आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ गए उनकी मां के और कहा फिकर न करो, अब बच्चा उठते ही उसकी आंखें आ जाएगी, बच्चा उठेगा ना तो उसकी आंखें आ जाएगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने खुद ये बातें लिखी है कि मेरी वालिदा ने ये बातें सुनाई। अब जैसे ही सुबह हुई तो अल्लाह अकबर, क्या हुआ, बच्चा क्या, बच्चे की आंख साइड आ गई, देखने लगा, नॉर्मल हो गया। बल्कि खुद लिखते हैं, उन्होंने खुद लिखा है, खुद लिखा है कि अगर बाज लोगों को दिन में नजर आता है, रात में नजर नहीं आता अंधेरे में, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मां की दुआ की वजह से और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरी आंखों पर हाथ फेर दिया, ऐसे हाथ फेरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो मुझे रात में भी नजर आता था। फरमाया मस्जिद नबवी में सहन में बैठकर, उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, फरमाया चांद की रोशनी में, सितारों की रोशनी में, मैंने जामे सगीर भी लिखी है और जामे कबीर भी लिखी है, चांद की रोशनी में, सितारों की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आंख उनको अता फरमाई। ये क्यों, माँ की दुआ की वजह से, है ना, माँ की दुआ की वजह से अता फरमाई। मालूम होता है माँ बाप को अपनी औलाद के लिए दुआएं पहले करनी चाहिए, तावीज बाद में, पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो मुसीबत उतरी है उसको भी खत्म कर देंगे और जो मुसीबत आइंदा आने वाली है उसको भी खत्म करेंगे। जिसको दुआ करने के टाइम मिल गया 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, तो समझो कि उसको बहुत बड़ी नेमत मिल गई, बहुत बड़ी नेमत मिल गई। और अल्लाह तौफीक किसी को दे दे दुआ मांगता ही रहे हर नमाज के बाद, रोजाना, रात में, दिन में, तो अल्लाह ताला उसकी सारी मुरादें पूरी करता है। और यकीनन जो दुआ करता है बंदा या बंदी तो उसकी दुआ कबूल होती है, देर सवेर कबूल होती है, अगर फौरन कबूल नहीं हुई तो बाद में कबूल होती है, अगर बाद में कबूल नहीं हुई तो अल्लाह ताला उसके जो कुछ मांगा है उसके नेमल बदल पर दूसरी कोई चीज दे देता है। और अगर नबी मिली तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को, कितनी दुआ आप मांगते हैं देखो, आप पूरा रमजान हमने कितनी दुआ मांगी है, अगर नहीं भी दिया तो अल्लाह इन सारी दुआओं को लिख लेता है और कयामत में कहेगा भाई आ इधर आ, तू बहुत रो रो कर दुआ करता था, इधर आ, ये सब ले जा उस दुआओं के बदले में। तो वो एक इंसान कहेगा काश के दुनिया में मेरी कोई दुआ ही कबूल न हुई होती, मेरी दुआ ही कबूल न हुई थी, क्या आज अल्लाह पाक ने मुझे उन दुआओं के मांगने की वजह से क्या और क्या अता फरमाया है। तो या तो दुआ, इसलिए कि इंसान बहुत जल्दबाज है, वो चाहता अभी मांगू अभी हो जाए, अभी मांगू अभी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी जब काबतुल्लाह को बनाया कि अल्लाह अरब में कोई ऐसा पैदा फरमा जो लोगों को कुरान सिखाए, तालीम सिखाए, तजकिया करे, तो 5000 साल के बाद दुआ कबूल हुई। और कौन पैदा हुए? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। कोई जरूरी नहीं है कि फौरी तौर पर दुआ कबूल हो, दुआ कभी लेट भी कबूल होती है, लेकिन अल्लाह किसी की दुआ को जाये नहीं करता है, यकीनन कबूल होगी। हमें चाहिए कि कसरत से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा नबी अकरम, दुआ ऊपर से मुझे याद आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा, एक वाइफ, जिनका नाम था उम्मे सलमा, क्या नाम था? उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके शोहर का नाम था अबू सलमा, उम्मे सलमा और अबू सलमा, और उनका एक छोटा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, उसका नाम अमर था, एक है उमर और एक है अमर, अमर में पीछे वाव आता है तो पढ़ा जाता है अमर, और उमर में एन मीम रा है, वाव नहीं आता तो वो उमर पढ़ा जाता है, उमर इब्नुल खत्ता और अम्र इब्नुल आस, तो अमर अलग है। तो इस बच्चे का नाम अम्र इब्न अभी सलमा था, बाप का नाम अबू सलमा था। तो अब ये बच्चा तीनों इस्लाम ले आए, याद रखो जितनी तकलीफ दीन को फैलाने में मर्दों को हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, इतनी तकलीफ औरतों को भी हुई है दीन फैलाने में, जितनी तकलीफ मर्दों को हुई है इतनी तकलीफ औरतों को भी हुई है। इसीलिए हमारी जो शरीयत है ना, 98% जो है, जो अहकाम अल्लाह ने मर्दों को दिए हैं वही अहकाम औरतों को भी दिए हैं, सिर्फ 2% ऐसे अहकाम है जो औरतों के साथ खास है, बाकी 98% ऑल द इस्लाम के अहकाम है उसमें मर्द और औरतें बराबर है। इसलिए दीन फैलाने में औरतों ने भी बड़ी मेहनत की है। देखिए यहां पर अबू सलमा भी मुसलमान हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से, उम्मे सलमा भी हो गई, और बच्चा तो भी बच्चा, दूध पीता बच्चा था। ये बात हमेशा याद रखे, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो पैदा होता है चाहे क्रिश्चियन के घर में, चाहे यहूद के घर में, चाहे किसी मुशरिक के घर में, किसी के भी आए मुसलमान के घर में, वो इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा आई अलल इस्लाम, उसके बाद उसके मां बाप उसको जैसे जैसे बड़ा होता है उस रिलीजन पर ले जाते हैं, वरना हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा। अब अजीब बात हुई, तीनों मुसलमान हो गए, अबू सलमा भी मुसलमान और उम्मे सलमा भी मुसलमान। अब इन लोगों ने इरादा किया कि हम हिजरत करेंगे, क्या करेंगे, हिजरत करके मदीना चले जाते हैं। तो बाप और मां और बच्चा तीनों निकले, वही मक्का से मदीना वाले रास्ते पर आए, लोगों को पता चल गया कि ये तीनों हिजरत कर रहे हैं, बच्चे को लेकर दोनों हिजरत कर रहे हैं। तो शौहर के खानदान वालों ने जल्दी जल्दी आए, वो सब मुशरिक थे, शौहर के खानदान वाले आए और उस औरत से दूध पीते बच्चे को छीन लिया। वो तो उस माई को पता है जिसका बच्चा छीन लिया जाए दूध पीता हो, जैसे मछली पानी से बाहर तरपती है वैसे जिस माई का बच्चा चला जाता है वो मां तरपती है मछली की तरह। दूध पीता बच्चा छीन लिया, कहा तू जा सकती है, ये बच्चा नहीं आ सकता, ये तो हमारा है। इन लॉज फैमिली कहते हैं ना, इन लॉज फैमिली, हस्बैंड के फैमिली, तो औरत के लिए तो इन लॉज फैमिली हुई। उन्होंने बच्चे को ले लिया, ले गए। अब बिचारी बैठी बैठी रो रही है, बच्चे के बगैर कैसे जाऊं, दूध पिलाना है। बच्चा भी रोता है लेकिन छोटा बच्चा, अंडर टू इयर्स, वो क्या समझेगा। ले गए इधर, और फैमिली आई दोबारा और उन्होंने कहा कि शौहर तू जा सकता है लेकिन तेरी बीवी जो हमारी बेटियों में से है वो नहीं आ सकती। तो इधर से उम्मे सलमा की फैमिली वाले उम्मे सलमा को ले गए और इन लॉज फैमिली वाले बच्चे को ले गए और अबू सलमा अकेले रह गए। कहा मैं तो सफर करूंगा, बच्चे को भी छोड़ा, बीवी को भी छोड़ा, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक अल्लाह के लिए हिजरत की। अब उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, बच्चा भी चला गया, वो भी दूसरे के पास है और बीवी भी चली गई, बीवी भी रो रही है। अबू सलमा चले गए, मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। इधर उम्मे सलमा कहती है कि मैं रोजाना रोती रही और हर नमाज के बाद दुआ करती रही, मैं दुआ करती रही, दुआ पर से मुझे बातें याद आई, दुआ करती रही जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनहु। बहुत आसान दुआ है, मेरी माए और बहने ऐसी दुआएं याद करनी चाहिए। अब मांगते रहेंगे तो अल्लाह उसका नेमल बदल देगा। आप देखिए इस दुआ में दुआ का क्या असर होता है, मांगती रही अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, ए अल्लाह बहुत मुसीबत मेरे पास आई हुई है, अल्लाह उसका बदला मुझे अता फरमा, उसका सवाब अता फरमा, मुसीबत का सवाब मुझे दे, और वखलुफ ली खैरम मिनहु, और जो कुछ नुकसान हुआ उससे बेहतर मुझे दे दे, जो कुछ नुकसान हुआ उससे बेहतर दे दे। दुआएं मांगती रही अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, और रोजाना वही मक्का से मदीने वाले जाने वाले रास्ते पर आके बैठ जाती थी और रोती थी, क्योंकि अब तो हस्बैंड भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है और कोई वली भी नहीं है, मैं कैसी अकेली जाऊं, कैसे अकेली जाऊं। ऊंट पर आकर बैठ जाती थी, आती थी फिर चली जाती थी, घर पर आती थी तो एक काफला, बाज लोग अगरचे मुशरिक होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, एक काफला आया, उस उम्मे सलमा से पूछा क्या हुआ, कहा मेरा शौहर चला गया और इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, मेरा बच्चा भी छीन लिया और बच्चे के बगैर मैं कैसे जाऊं, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है, एक ही बच्चा है, मैं कैसे जाऊं। कहा किसके पास है, कहा मेरे शौहर की फैमिली मेरा बच्चा ले गई। वो सब ग्रुप वाले मिलकर उस फैमिली के पास गए, कहा भाई ऐसा मत करो, किसी औरत को क्यों सताते हो, औरत को क्यों तकलीफ देते हो, बच्चा वापस कर दो ताकि अपनी माँ बच्चे को दूध पिलाए, बच्चे अकेला रहेगा, परेशान होगा, बच्चा भी परेशान, उसकी माँ भी परेशान, उधर उसका बाप भी परेशान होगा, मदीना में तीनों अलग हो चुके हैं। तो उन्होंने समझाने के बाद बच्चा दे दिया, जा ले जा, बच्चा दे दिया, बच्चे लेकर आ गई, चलो बच्चा तो मिल गया, माँ को बच्चा तो मिल गया उस दुआ की वजह से, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहू, दुआ मांगा करती थी, ए अल्लाह इस मुसीबत को हल कर दे, बेहतर सवाब अता फरमा, बहुत नुकसान हुआ, अल्लाह उसे बेहतर मुझे अता फरमा। आ गई, उसके बाद फिर आती थी, उसी रास्ते पर बैठती थी। देखा एक आदमी ने कहा, बहुत पाक बास था, नेक साले आदमी था, उसने कहा लाओ तुम्हारी ऊंटनी की नकील मैं पकड़ता हूं, ऊंटनी की रस्सी मैं पकड़ता हूं, तुम और बच्चा ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मदीना मुनव्वरा ले जाता हूं। मदीना मुनव्वरा आए तो तलाश किया, किसको तलाश किया, अपने शोहर कहां रहते हैं, अपने शोहर के पास जाएगी ना पहले, कहां है अबू सलमा, फाइंड आउट किया तो कहा मेरे शोहर अबू सलमा फुला जगह पर है, वहां चली गई, वहां चली गई। अबू सलमा ने कहा अगर तू नबी आती तो मैं तो हिजरत छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए कि मैंने हिजरत की एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह को राज। कितनी तकलीफ देखो ना, बीवी को तकलीफ। अब आप देखो ना, आप मक्का मुकर्रमा से मदीना, मदीना का सफर करो, अगर कोई बस में सफर करो तो आपको पता चले, गर्मी हो बस हो, और वो भी वो स्कूल बस हो, फिर देखो जिसमें एयर कंडीशन ना हो, यहां तो ऊंट पर सफर है, कोई पंखे का सवाल नहीं, बच्चे के साथ सफर करना है कोई आसान काम है एक औरत के लिए। शौहर के पास चली गई, अल्लाह अकबर, जब वहां पहुंची, वहां शौहर के पास, अल्लाह अकबर, ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और दुआएं ले ली, वापस जहां रहते थे रहने लगे, सब जमा हो गए, अलग हो गए थे, अल्लाह पाक ने दुआ की वजह से तीनों को जमा कर दिया, माँ और बेटा और शौहर, तीनों जमा हो गए। सुभान अल्लाह, 8 दिन के बाद मदीना पहुंची, 8 दिन के बाद, इट टुक 8 days टू रीच मदीना मुनव्वरा, अल्लाह अकबर। सो दुआ करती रही, दुआ करती रही, अब उनके शौहर अबू सलमा है, बदर में भी लड़ने गए थे अल्लाह के नबी के साथ, बदरी साहबी है, और ओहद में भी गए, तो ओहद में उनको कोई स्पीयर लग गया दुश्मन की तरफ से, बहुत ही बड़ा बड़ा जख्म हो गया, वुंडेड, उस वक्त उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन वो जख्म बढ़ता गया, खून निकलता गया, बढ़ता गया, कभी खून ज्यादा निकलता था, बढ़ता गया। अब उस जमाने में क्या डॉक्टर, क्या डॉक्टर, उसी जख्म के अंदर में 3 हिजरी के बाद ये वहां पहुंचे हिजरत की, और 4 हिजरी में, वो 4 हिजरी में शुरू में हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अनहु का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला अबू सलमा इंतकाल कर गए, उनके मकान पर गए जहां वो छोटे घर झोपड़े में रहते थे, वहां पहुंच गए, अबू सलमा के पास पहुंचे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। मैंने सुबह भी कहा था कि वो अबू सलमा की आंख किसी ने बंद नहीं की, आंख खुली रह गई। औरतों को चाहिए जब कोई औरत का इंतकाल होता हो तो रूह निकलते ही फौरन उसके हाथों को सीधा कर दिया जाए, उसके पैरों को सीधा कर दिया जाए, आंख बंद कर दी जाए, मुंह को बंद करके थोड़ा सा रस्सी यानी कोई कपड़ा बांध दिया जाए ताकि मुंह खुला ना रह जाए, क्योंकि अब जब रूह निकलती है तो मुंह खुला रह जाता है, फरिश्ते को देखते देखते आंख खुली रह जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई ये तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ, तुमने आंख इनकी बंद नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ लिया, उन पर ऐसे रखा और आंख बंद हो गई। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा था, आंख बंद हो गई। फिर उसके बाद कहा तुम्हारे भाई का, बैठे हुए थे इतने में पीछे से रोने की, जोर से रोने की आवाज आ रही है पर्दे के पीछे से, मालूम किया कौन रो रहा है। कहा अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा रो रही है, ये उम्मे सलमा है रो रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे कहा, फरमाया अन्याह तो फिल जाहिलिया, जोर से रोना और रोते रोते बोलना ये नोहा है, मून जिसको कहते मून, ये नोहा है और ये नहीं करना चाहिए, इससे मुर्दे को तकलीफ होती है, नोहा कर देना, यानी द पर्सन क्राइज एंड ऑल्सो से लाउडली एंड समटाइम्स ज़रबल खुदूद, हिटिंग ऑन द फेस, हिटिंग ऑन द चेस्ट एंड टेयरिंग द क्लोथ्स, इस तरह चेहरे पर मारना, कपड़े फाड़ना, जोर जोर से बोलना अल्लाह मेरा शौहर ही तुझे मिला और कोई मिला ही नहीं, इस किस्म की बातें करने से मुर्दे को तकलीफ होती है, ऐसे जोर से। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमा, इन्नल आइन तदमउ वल कल्ब ताज़र यहज़नु व इन्ना नकूल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैही राजिऊन, आंखें रोती है, यस मोहब्बत है अपने शौहर के साथ, आंखों से आंसू आने चाहिए, ये मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम को गोद में लिए हुए रो रहे थे, इंतकाल हो रहा था। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ, दिल के अंदर मोहब्बत है तो रोना आता है, आवाज से नहीं, चिल्लाना नहीं, स्क्रीम नहीं करना है, ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोना जरूर आता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आंखों से रोना और दिल से गम, गम होता है ना शौहर के इंतकाल पर, और जबान से कहना है, क्या कहना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख का भी बयान कर दिया, दिल का भी बयान कर दिया, और क्या कह दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आदमी पढ़े तो अल्लाह उसको बेइंतिया सवाब अता फरमा दे। الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم। अल्लाह की तरफ से एक सलात नहीं, सलवात, रहमत ही रहमत ही रहमत उतरती है उस बंदे बंदी पर। اولئك هم المفلحون and she or he is कामयाब। हाँ, उनके लिए जन्नत में बैतुल हमद बना दिया जाता है, घर बना दिया जाता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो समझ गई, समझदार औरत थी, कैसी समझदार थी मैं आपको बताऊंगा, समझ गई। लेकिन कायन का कफन दफन सब हो गया, उम्मे सलमा अकेली रह गई, कोई रिश्तेदार नहीं, शी इज अलोन, कोई वली नहीं, कोई भाई नहीं, कोई चचा नहीं, वो है बेवा औरत है और उसका बच्चा है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा करीबन 7 साल का हो चुका, छोटा बच्चा है। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तरस आया अबू सलमा पर, इंतकाल हो गया उसी एक जख्म के अंदर में, और बेचारी बीवी अकेली है। तो उस अय्याम में, इद्दत के जमाने में, अबू सलमा, वो दुआ उनको याद आ गई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन, बस ये दुआ पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। इधर इद्दत खत्म हुई, खत्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के जरिए से पैगाम कहलवाया कि मैं नबी तुमसे शादी करना चाहता हूं, हालांकि बूढ़ी हो गई थी, मैं नबी तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्योंकि वो ऐसा सोचा करती, अब मेरी जिंदगी, मेरा शौहर बहुत अच्छा था, माई हस्बैंड वॉज वेरी वेरी केयर फॉर मी, उससे बेहतर कौन हस्बैंड मुझे मिल सकता है, क्या हो ही नहीं सकता, माई हस्बैंड वॉज बेहतर देन एवरीवन, बहुत मोहब्बत थी दोनों में। तो देखो अल्लाह पाक ने हस्बैंड से बेहतर नबी अता फरमा दिया, ये दुआ की वजह से है ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वजल वखलुफ ली खैरम, बेहतर दे मुझे, और मेरे शौहर से बेहतर सोचती थी कौन, अल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा तो कहने लगी, अभी मेरा इरादा नहीं है आपसे भी शादी करने का, क्या कह रही है, आपसे भी शादी करने का मेरा इरादा नहीं है। मालूम होता है, एक बात जरूर याद रखो, मुसीबत में दुआ करोगे, खुशियों में दुआ करोगे तो अल्लाह मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा, खुशियों में दुआ करोगे तो मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। फिरौन ने खुशियों में अल्लाह को याद नहीं किया, जब मुसीबत आई डूबने लगा तो अल्लाह को पुकार रहा है, तो अल्लाह ने मदद नहीं की। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुशी में भी अल्लाह को पुकारा, और जब मुसीबत आई समंदर के अंदर मछली के पेट में, उस वक्त भी पुकारा तो अल्लाह पाक ने उनकी मदद कर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल बीमार रहे, खुशियों में अल्लाह को पुकारते रहे, जब बीमारी आई 7 साल तक 8 साल तक, तो अल्लाह से कहने लगे, रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, हे अल्लाह अब बहुत हो गया, बहुत बीमार हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज प्लीज मुझे शिफा अता फरमा। तो अल्लाह ने उनको कहा, बाहर निकलो घर से, ये पानी निकलेगा, जमीन से पानी निकला, चश्मा कैसे गुसल करो, इसको भरो, अपने ऊपर डालो, डाला तो बिल्कुल शिफा हो गई, उसी पानी से शिफा हो गई, और माल चला गया तो अल्लाह पाक, बच्चे इंतकाल कर गए, अल्लाह ने उसे बेहतर अता फरमाया, माल चला गया, बारिश में पानी नहीं, सोने की गिन्नियां गिरी, तो फरमाया, अय्यूब मैंने कितना दिया तुझे, और तू फिर गुसल करते करते जल्दी जल्दी वो ऊपर से गिर रही, यहां स्नो गिरता है,
उस जमाने में सोना गिरता, ये तो कुरान कह रहा। वो लेने लगे, फरमाया क्या कम है तेरे पास, कहा तेरी नेमत का कौन इनकार कर सकता है, अल्लाह तू दे रहा है कौन इनकार कर सकता है। तो मालूम होता है कि औरतों ने भी बहुत तकलीफ उठाई इस्लाम को फैलाने में, और मर्दों को जितनी तकलीफ हुई इतनी औरतों को हुई। अल्लाहु अकबर। इससे मालूम होता है कि उन्होंने यूं कहा मेरा इरादा नहीं है। तो अगर हमारी जवान लड़कियां अगर खुश नहीं है अभी, तो उसको इतना फोर्स ना करो, लेकिन अपोजिट साइड अब उलमा से अवर यंग डॉटर्स आल्सो मस्ट लिसन टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक तो ज्यादा फोर्स नहीं करना है, उनके सामने नरमी से उसका मशवरा भी लेना है। ऐसा नहीं कि बच्ची से पूछा नहीं और मंगनी कर दी बगैर पूछे, ये अच्छा नहीं है। बच्ची का मशवरा करो, देखो भाई ये लड़का है आप ही देख लो, अगर पसंद है तो आगे हम बात करते हैं। इसलिए कि बच्ची बात जल्दी मानती है, लड़की बात जल्दी मानती है लड़के से ज्यादा। हाँ, इसीलिए मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं, शायद कभी सुनी हो ना सुनी हो। हदीस में आता है कयामत की निशानियों में से है अंतलिदल अमतु रब्बताहा, रब्बहा नहीं रब्बता, लड़का नहीं लड़की। एक जमाना आएगा कयामत से पहले कि लड़की मां की नाफरमान हो जाएगी, लड़की रब्बता है मां की नाफरमान होगी। आमतौर पर लड़की नाफरमान नहीं होती है, लेकिन कयामत से पहले क्या होगा, लड़की मां की नाफरमान होगी। ये बहुत सारी तफसीरों में से एक तफसीर ये भी है, मां की नाफरमान होगी, वरना लड़कियां नाफरमान नहीं होती। इसीलिए क्या कहा नबी सासम ने, लड़का पैदा हो तो उसकी रिकवरी करने के लिए बहुत ज्यादा तूफान न करें, दो पकड़े काटो, कितने भाई मोहद्दिसीन फरमाते हैं दो काटो, और लड़की अगर हो तो एक काटो। तो कोई आदमी सवाल कर सकता है क्या लड़का बहुत वैल्यूबल है कि लड़के के लिए दो काटते हैं, लड़की के लिए एक ही है, लड़की को हकीर समझते हैं, बच्चे तो बराबर है, यही लड़का है भी लड़की, दोनों के लिए दो तो होने चाहिए। मोहद्दिसीन कुर्बान जाऊं क्या जवाब दिया कि लड़की बहुत नाफरमान नहीं होती है तो एक बकरे में काम चल जाता है, लेकिन लड़का जरा नाफरमान ज्यादा होता है तो उसके लिए दो बकरे काटो, और हम तो खाने वाले हैं ना, तो जरा बस दो बकरे हो जाएंगे, लेकिन सोचते नहीं है कि ये क्यों कहा गया है। सो खैर, ये तो रिकवर करने के लिए होता है, इसलिए बच्चियों की तरबियत ज्यादा जरूरी है, बच्चों से ज्यादा बच्चियों की तरबियत। आमतौर पर माशाल्लाह मदरसे खुले जाते हैं जहां बच्चियां तालीम हासिल करती है। खैर, तो हजरत बात चल रही, मैं कहीं से निकल जाऊंगा तो बात पूरी नहीं होगी मेरी, दुआ कितना काम देती है। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला से अनहा से बिकॉज ऑफ थ्री रीजन मैं शादी करना आपसे नहीं चाहती हूं, तीन वजह चार वजह। एक वजह तो यह है कि मैं बुढ़ी हो गई, मैं बुढ़ी हो गई, समझ में आती बात। दूसरी वजह यह है कि मैंने एक दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया था, किसको, अबू सलमा को, अब मैं दूसरा दरवाजा पकड़ना नहीं चाहती। कितनी मोहब्बत होगी अपने शौहर के साथ, एक दरवाजा पकड़ लिया था अब मैं दूसरा दरवाजा पकड़ना नहीं चाहती हूं। और तीसरी बात, मैं बहुत गैरतमंद हूं, हया वाली हूं, शर्म वाली हूं, बहुत गैरतमंद हूं। तीन बातें बयान फरमाई। चौथी बात, मेरे पास बच्चा भी है, आजकल तो शादी नहीं करते अगर बच्चे हैं तो, बच्चे हैं तो शादी, अगर लड़की का शौहर, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए या तलाक हो जाए, उसके बच्चा हो तो क्या बच्चे हैं तब तो शादी नहीं करना है, तो मेरे पास तो बच्चा है। ये चार रीजन बयान किए उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू बूढ़ी हो गई तो क्या फिक्र है, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं भी तो सिमिलर एज है, तकरीबन सिमिलर एज है, लेकिन और तू कह रही है कि दूसरे और तीसरी जो रीजन है कि मैं बहुत हया वाली हूं, बहुत गैरतमंद हूं, और एक शौहर के बाद दूसरा शौहर पकड़ना नहीं चाहती हूं, तो सुन ले, मैं भी तो गैरतमंद हूं। हां मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं तुम्हारे साथ कि तू मेरी बीवी होगी तो सारे मुसलमानों की मां बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उम्मुल मोमिनीन बनेगी ना। और तुझसे तू मुझसे इलम हासिल करेगी। देखो तू मुझसे इलम हासिल करेगी तो इलम हासिल करके तुझसे सारी दुनिया इलम हासिल करेगी। इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, ख्वाहिशात के लिए नहीं। इतनी ज्यादा बीवियों से शादी करने की वजह कि अल्लाह के नबी के बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं है। मर्दों में तो बयान वगैरह सब होता है, औरतों में इलम फैलाने के लिए तो घर की औरतें ही जानती है ना, घर की औरतें ही शौहर को जानती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कौन जानती है ज्यादा। तो इसलिए इतनी शादियां की ताकि औरतों में भी दीन फैले। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने जब यह सुना, रह गया बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा, वो मेरा ही बच्चा है। शादी हो गई, खुश हो गई कि चलो कि भाई मुझसे दीन फैलेगा, मेरे बच्चा भी शायद कुछ सीखेगा, दीन फैलेगा। राजी हो गई और शादी हो गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। घर पर आ गई बच्चे को लेकर, अल्लाह के नबी की बीवी हो गई। अब उस दुआ का असर देखो, बेहतर शोहर मिल गया। अबू सलमा से बेहतर शोहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। 7 साल रही, कितने साल? 7 years she stood with नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 साल, मेरी बात समझते हैं? 7 साल रही। हमारे इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 7 साल में मदरसे में क्या बन जाता है? मौलवी मुफ्ती बन जाता है। मौलवी बन जाता है ना, 7 साल तो लगते हैं, मौलवी बन जाता है, आलिम बन जाता है 7 साल के अंदर में। इधर देखिए, वो बात बाद में बयान करता हूं कि वो क्या बनी उसके बाद। बच्चा छोटा था, अल्लाह के नबी के घर पर 8 साल का हो गया, अल्लाह के नबी के घर पर अब ये बड़ा हो रहा है। तरबियत क्यों, कौन कर रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ले पालक बच्चा है, दूसरे शोहर का, अबू सलमा का है, लेकिन तरबियत, खाने बैठे हुए थे तो बच्चा जो है वो इधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, इधर। उस जमाने में तो प्लेट में एक ही चीज होती थी, हाँ अगर अलग अलग चीज हो तो इधर से ले लो, इधर से ले लो तो ठीक है, लेकिन एक ही चीज हो तो बच्चे को भी पता नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने फौरन नहीं कहा ऐसा मत कहो, गुस्सा नहीं किया, बाद में कहा। अगर कोई माँ और बाप गुस्से में हो तो फौरन बच्चे को नहीं मारना चाहिए, वरना आप ज्यादा मार दोगे। उस वक्त तो इसको कुछ ना कहो, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए बाद में उसकी तरबियत करो, उसको डांटो, तो आप गुस्से से ज्यादा नहीं मारेंगे बच्चे को। समझ में आ रही बात? तरबियत भी होगी और वो बात को सुनेगा। अब तुम भी गुस्से में, वो भी गुस्से में मारोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए उस वक्त खामोश, बाद में उसको शाउट करो। और आमतौर पर औरतें कहा करती है ना शोहर को, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं, तुम तो कुछ कहती ही नहीं बच्चे को। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, इसको कुछ कहेंगे लेकिन मौका देकर कहेंगे, ताकि बात उसके दिमाग में क्या है, बैठ जाए। ये तरीका था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया इधर आओ, खाने के बाद थोड़ी देर के बाद शाम को बैठे होंगे। कहा खाने के लिए बैठे तो पहले हाथ धो लो। क्या वहां? देखो खाने से पहले चाहे तुम फ्रूट खाओ, जो भी खाना तुम हाथ से खाते हो पहले हाथ धो, दोनों हाथ को धो लो। मुझे याद पड़ता है मौलाना असलम साहब शेखुपुरी, जिनके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन दोनों पैर नहीं थे लेकिन मदरसे में व्हीलचेयर में रहकर 7 साल तक, 8 साल तक उन्होंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया इस हालत में, दोनों पैर नहीं थे। और बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, मैंने तो उनकी तफसीर सुनता ही रहता हूं, बहुत अच्छी बात फरमाते। लेकिन बाद में दुश्मनों ने उनको तफसीर करके घर जा रहे थे तो गाड़ी में उनको शूट कर दिया। उन्होंने किताब लिखी है, अपनी किताब में एक वाकिया लिखा है हाथ धोने के ऊपर, जो आप सबके लिए और खासकर मेरी माए अपने बच्चों की तरबियत करे। का एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं इंडिया में देखो पाकिस्तान में, वो लंबा चलाते हैं, फिर रात में या ईशा के बाद या शाम को किसी होटल के पास अपने, किसी होटल के पास अपने ट्रक को पार्क कर देते हैं, बाद में फिर वो वहीं सो जाते हैं खाना खाकर वो होटल में। तो ये आम तौर पर ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, गाड़ी को, ट्रक को पार्क करके पहले टायर चेक कर लेते हैं कि फिर आगे चलाने में तो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसे हाथ से इधर उधर करते हैं टायर को, लगता है थोड़ी हवा कम है तो और देखते, चलो बाद में। इन्होंने टायर को ऐसा ऐसा किया, पानी भी चेक कर लिया हाथ से टायर को, चलो उसके बाद उसने हाथ नहीं धोया, होटल में खाने के लिए बैठा, अभी दो लुक में खाए के इंतकाल कर गया,
दो लुक में खाए ना,
तो वहीं खाते खाते मर गया। बाद में होटल वाले की तो आ बनी कि कहीं पॉइजन फूड, लेकिन पॉइजन फूड भी दो लुक में ना बाद में होता है, एकदम तो हजम होने के बाद होता है। तो उन्होंने देखा, उसके हाथ को चेक किया, उसके बाद टायर के पास गए तो देखा वो ट्रक चलाते आया होगा, तो रास्ते में कोई पॉइजन सांप जो था वो ट्रक के नीचे आकर मर गया था, तो उसका पॉइजन उस ट्रक के टायर के ऊपर लगा हुआ था, और इसने अपने हाथ को इस तरीके से किया था हवा देखने के लिए, तो पॉइजन हाथ में लगा हुआ था, और इसने खाने से पहले हाथ नहीं धोया था, और जैसे ही खाना खाया उस पॉइजन से उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर से कहा, अबू सलमा के बेटा, अपना ही बेटा, कहा हाथ धो लो, सम्मिल्ला, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपनी तरफ से खाओ, खाने से पहले भी हाथ धो, खाने के बाद भी हाथ धो, और खाने के बाद दुआ पढ़ो। ये सिखाया, पांच बातें सिखा दी। अब ये पांच बातें, हजरत अमर कहते हैं मेरी उम्र 70 इयर्स की हो गई, मैंने इसमें से एक भी बात कम नहीं की। अब देखो इस बच्चे को तालीम दी तो आज मुझे भी पता चला, आपको भी पता चला, खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, ये तरबियत थी। और इधर उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुफ्तिया बन गई, मुफ्ती, सारी बीवियों में मुफ्ती कौन थी, हजरत उम्मे सलमा थी, 7 साल इल्म हासिल किया। इसीलिए इब्न कय्यिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन्होंने जब ये आलिमा बन गई, मुफ्तिया बन गई, और उनके लोग उनको फतवा पूछते थे, देखो इंतकाल तो हो रहा, अल्लाह के नबी तो सन 11 हिजरी में, 10 हिजरी की एन में के बाद इंतकाल फरमा गए, और ये जिंदा रही 58 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, तो कितने साल जिंदा रही, तो कहा उनके इलम से 344 मसाइल उन्होंने लोगों को बयान की, औरतों के मसाइल बहुत सारे, इब्न कय्यिम ने इसको जमा किए। देखो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि तू, मैं तुझसे इसलिए शादी करना चाहता हूं, एक तो, लेकिन मेरे पास तो कोई वली नहीं है, तो कहा तेरा बेटा 7 साल का, वो इसको वली बना देते, शादी हो गई, और कहा मैं चाहता हूं कि तेरे जरिए से भी लोग क्या हासिल करें भाई, इल्म हासिल करें, क्या हासिल करें, इल्म हासिल करें। मालूम होता है कि बंदा या बंदी जब दुआएं करती है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या है, उसकी दुआओं को जाया नहीं करता है। अपने लिए दुआ करो, अपने शोहर के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, सारी उम्मत के लिए दुआ करो। अभी भी कुछ घंटे, कुछ दिन बाकी है, कल का दिन भी हो सकता है, अल्लाह से खूब दुआएं करो, मांगो अल्लाह ताला से, मगरिब से पहले, इफ्तारी से पहले, असर के बाद, हदीस में है हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है, और इस्तिगफार की कसरत कर लो। अगर इस्तिगफार आप लोगों ने नहीं किया मेरे भाइयों और मेरी माएं और बहनें मदरसे में बैठकर सुनने वाली, अगर आप लोगों ने इस्तिगफार नहीं किया तो 1-2-3 हजार बार पढ़ लो, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, उर्दू में कह दो, अरबी में कह दो, अपनी जबान में कह दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, 1,000 बार, 2,000 बार, 3,000 बार कह लो। अल्लाह का नबी रोजाना 100 बार अल्लाह से कहता था अल्लाह माफ कर दे, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते थे, या अल्लाह मगफिरली कहते थे, तो उसमें क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जिनको रमजान का महीना मिले और उसकी मगफिरत नहीं हुई है तो अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आमीन। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस बद्दुआ में हम शामिल हो जाएं, तो अल्लाह से कसरत से भी क्या कर लो, अल्लाह मगफिरली पढ़ लो, खूब पढ़ो। आज अभी से लेकर कल शाम तक अगर बाकी रहा, और आज की रात अगर चलो चांद हो भी गया तो ये रात बहुत कीमती रात है, इस रात में तो यौमुल जायजा है, अल्लाह ताला पूरे महीने के बदला देगा, और इस रात में अल्लाह की तरफ ज्यादा कम से कम तहज्जुद ही पढ़ लें उठकर, अगर ईद हो तो, अगर नहीं है तो कल का दिन बहुत कीमती है, उस दिन तक में अभी तक 4 सेल बाकी है, अभी एक खरीदो तो 70% मिलेगा ना, बाकी है, तो कसरत इस्तिगफार कर लो, तस्बीह में गिन लो, अल्लाह मगफिरली। मैं देखता हूं कि आप देखेंगे कि 1 मिनट में आप 60 मरतबा अल्लाह मगफिरली पढ़ सकते हैं, 1 मिनट में, 15 मिनट आपने इस्तिगफार 1,000 बार हो जाएगा अल्लाह मगफिरली, लेकिन ध्यान के साथ, ध्यान किसी से बात ऐसा भी करता रहता है और बात भी करता है, उसे कुछ नहीं होता। जैसे मैंने सुबह कहा, दुआ भी करते हैं और देखते भी रहता है इधर उधर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गफलत में जो दुआ करते हैं उसकी दुआ ही कबूल नहीं होती। गफलत में जो लोग दुआ करते हैं, गफलत में कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, हाथ उठाए हुए हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, दुआ कर, तू तेरा मांग लो उसको क्यों देखता है, ऐसे हाथ उठाओ, अपने हाथ में देखो, अल्लाह के सामने तवज्जो रखो तो दुआ। अगर आदमी गाफिल है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, गाफिल है दुआ कबूल नहीं होती, याद रखो। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के नबी फरमाते, इसलिए तवज्जो के साथ सीने के मुकाबले में हाथ उठाकर अल्लाह से आजिजी के साथ, अगर आंसू से आंसू न भी निकले तो रोने वाला चेहरा बनाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ कर देगा। तस्बीह हाथ में लो और 1000 बार 2000 बार क्या पढ़ लो, अल्लाह मगफिरली, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी वजह से हमारी मगफिरत कर देगा। तो हमको पूरे मगफिरत हो गई तो अल्लाह रहम कर देगा, वगफिर लना वरहमना रब्बिगफिर वरहम। पहले अल्लाह हर जगह पहले इगफिर माफी मांग। मैं कहा मिसाल खत्म कर देता हूं, वो बच्चा जब बाप का नारा नाफरमान हो जाता है, नाराज कर देता है, तो पहले माफी मांगता है, पहले नहीं कहता मुझे 5 पाउंड दे दो। वो तो बाप तो गुस्से में है, 5 पाउंड कहां देगा तुझे, जो फादर एंग्री, हाउ कैन ही गोइंग टू गिव यू 5 पाउंड्स। पहले बाप से माफी मांग, पहले ये काम कर तो ईद का इनाम दूंगा, मैंने माफी मांग। तो माफी मांगता है तो उसके बाद बाप उस पर रहम करता है, ठीक है ले ले जा। इस तरह हम भी अपने गुनाहों की पहले अल्लाह से माफी मांग लो, रब्बिगफिर, तो अल्लाह पाक वरहम क्या कर देगा, रहम करेगा। जब अल्लाह रहम करेगा तो अल्लाह ताला हमारे पूरे महीने की इबादतों को क्या कर देगा, कबूल कर लेगा। जो कुछ रुकावटें हैं रोजी में, जॉब में, घर में परेशानियां हैं, अल्लाह उसको दूर कर देगा, इसलिए कि वो अंत खैरुर राहिमीन है, बहुत मोस्ट मर्सीफुल है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे रमजान के रोजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। या रहमान रहीम अल्लाहुम्मा اللهم لك الحمد ولك الشكر 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فارج الهم وكاشف الغم اللهم فارج الهم وكاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا يا أرحم الراحمين في رمضان يا أكرم الأكرمين اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم بڑے گنہگار ہیں اللہ، گناہ کرتے زندگی گزر گئی، اللہ آخری عشرہ بھی ختم ہو گیا، کہتے تھے پہلے رمضان آ رہی ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے، پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا، تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اے میرے ربا ہم نے ایسے گناہ کیے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم روزہ رکھتے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر پاتے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، گناہ کے باوجود تو نے ہم سے روزے رکھوائے، بیماری کے باوجود تو نے ہم سے روزے رکھوائے، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دی، اے میرے مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اللہ روزوں میں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو معاف کر دے، قرآن پڑھنے میں کوتا ہی ہوئی بے ادبی بھی معاف کر دے اللہ، اے اللہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا ہم نے بے ادبی کی ہو معاف کر دے، کمی کوتا ہی ہو شارٹ کمنگ ہو ان اعمال میں اللہ تو معاف کر دے اللہ تو رحم کر دے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں لمبی عمر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پھر ہمیں رمضان دینا،
फिर हमें रमजान देना, फिर हमें रमजान देना, फिर हमें रमजान देना, हमें महरूम न करना, हमें महरूम न करना, हमें आफियत के साथ, आफियत के साथ ऐसी उम्र अता फरमा कि हम तेरी इबादत ज्यादा से ज्यादा करने वाले हो। ए अल्लाह तू कहता होगा तुम तो बेगरज हो, जब गरज होती है तो मेरे पास आते हो, जब गरज मिट जाती है तो मेरे दरवाजे पर नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, कुरान नहीं पढ़ते। यकीनन अल्लाह तू कहता होगा मेरी रहमत के उम्मीदवार तो बिलाल है, हफ्सा है, ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे सलमा है, हजरत आयशा है। अल्लाह यकीनन अबू बकर, उमर, उस्मान, साहबा, साहबियात ही तेरी रहमत के उम्मीदवार है। लेकिन अल्लाह वो तो दुनिया से चले गए, हम गुनहगार जैसे गंदे रह चुके हैं अल्लाह, दुनिया में हम जैसे गंदे रह चुके हैं अल्लाह, हम जानते हैं कि हमारा कोई नहीं है, तू ही है। और तूने कहा है इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ, मैं सारे गुनाहों को माफ करूंगा। ए मेरे बंदे तुमने बहुत गुनाह किए, आ मेरे सामने, आ मेरे सामने, जरा हाथ तो उठा ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह हम आ चुके हैं तेरे दर पर, आ चुके हैं, हाथ उठाए, अल्लाह तुम माफ कर दे, अल्लाह तुम माफ कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह हमें खाली हाथ न लौटाना, हमारी झोलियां भर दे, हमारी झोलियां भर दे। अल्लाह तूने कहा कि तुम्हें पता है ये रात के गुनहगार, ये दिन के गुनहगार, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिवा कोई अल्लाह नहीं है सिवाय एक अल्लाह के। हे अल्लाह तुम बंदों को कहते हैं यस, तुझे पता है कि एक ही अल्लाह है, आ मेरे सामने, मैं तुझे माफ करता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ। अल्लाह तुम माफी देने को पसंद करता है। हम आ चुके हैं, ये माएं और बहनें अपना घर छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर तेरे सामने आई है कि आज तो रमजान का आखिरी आश्रम है, वेनसडे है, हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें हमारे उस्ताद की दुआ होगी, दुआएं कबूल होगी, इस उम्मीद से आई है। मेरी दुआ तो बहुत कमजोर है अल्लाह, ये तो तेरे सामने आई हुई है, तेरे नबी की बात सुनने आई हुई है। अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे, हम सब की मगफिरत कर दे। ऐ अल्लाह कोई माँ, कोई बहन और कोई मेरा भाई यहाँ से ऐ अल्लाह ऐसा न जाए जिनकी झोली तूने न भरती हो, जिनकी मगफिरत न की हो। अल्लाह इस मजमे से उठे उससे पहले सबकी मगफिरत फरमा दे, सबकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह हमारे बीवी बच्चों की मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारी आलो औलाद की मगफिरत फरमा, भाई बहनों की मगफिरत फरमा, रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह करीब और दूर के रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह मुझसे मोहब्बत रखने वालों की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह मुझसे अल्लाह ताल्लुक रखने वालों की मगफिरत फरमा। ओ सारे मेरे भाई है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं कुरान और हदीस की वजह से, अल्लाह तेरी शान शान तो उनसे मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह उन जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारी खिदमत करते हैं और जहां कहीं हमसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ऐ अल्लाह उनकी औलाद को तो आलिम बना, उनकी औलाद को तो हाफिज बना, अल्लाह उनके घरों में तो इल्म अता फरमा, उनके घरों में कोई मुहद्दिस पैदा फरमा, उनके घरों में मुफस्सिर पैदा फरमा, कोई मुफ्ती पैदा फरमा, उलमाए रब्बानीन में से पैदा फरमा, कोई वली पैदा फरमा। या अल्लाह ता कयामत हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, अल्लाह हमारी औलादों को बिगड़ने से फिसलने से, गलत रास्ते पर जाने से बचा लेना, गुमराही से बचा लेना, गुमराही से बचा लेना। हर जगह में, हर स्ट्रीट में आज तो फितने फैले हुए हैं, कभी ड्रग्स के, कभी जीना के, कभी गास के पीने के, कभी क्या और कभी क्या। अल्लाह हमारी बच्चियों की और हमारे बच्चों की ऐ अल्लाह तू ईमान की हिफाजत कर लेना, अल्लाह उनकी ईमान की इज्जत की हिफाजत करना, सही रास्ते पर चलाना, नमाजी बना। अल्लाह हमारे घरों को सुकून वाला बना, घरों के झगड़ों को खत्म फरमा, रोजी में बरकत नसीब फरमा, औलादों को नेक बना, जिनकी औलाद बेजोर है नेक जोरे नसीब फरमा, नेक जोरे नसीब फरमा। बहुत सारी माओं ने कहलवाया है दुआ के लिए, अल्लाह हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह सबकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा, ऐ अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुसीबतों को दूर फरमा, औलाद की मुसीबतों को दूर फरमा, शोहर की मुसीबत को दूर फरमा, बीवी की मुसीबत दूर फरमा, घरों की मुसीबत दूर फरमा। ऐ अल्लाह घरों में روزی میں برکت نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ، ایک چھوٹا بچہ جب کوئی اس کو 5 پاؤنڈ ہدیہ دے دے، وہ بچہ اپنا پیسہ اپنے باپ کے جیب میں رکھ دیتا ہے، اپنی ماں کو دے دیتا ہے کہ امی تیرے جیب میں رکھ لے، تیری بیگ میں رکھ لے، ابا تمہارے جیب میں رکھ لے، جب مجھے ضرورت پڑے تب دینا. اے اللہ، بچے کو بھی پتا ہے میں پیسے کو لاس کر دوں گا، اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمیں پتا ہے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. اللہ ایمان کی امانت، اے اللہ ایمان کی امانت ہم تجھے سپرد کرتے ہیں. اے اللہ تو سب سے بڑا امین ہے، تو سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. جب ہماری موت آئے، فرشتے ہماری روح نکالنے کے لیے آئے، تو ہمارا ایمان اے اللہ ہمیں یاد دلا دینا اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہم تیرے پاس آ جائے. اے اللہ کہ تو خوش ہو، ہم خوش ہیں، ایسی موت ہم سب کو نصیب کر دینا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جو بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہو اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی آسان صورتیں پیدا کرنا. اے اللہ، اے اللہ، جن میاں بیویوں میں طلاق ہونے کا مسئلے چل رہے ہو، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما. الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اب ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ہر وقت دعا کی توفیق نصیب فرما، ہر وقت دعا مانگنے والوں میں سے بنا. اے اللہ، جتنی دعائیں ہم نے رمضان میں مانگی ہے، جتنی دعائیں مانگی ہے، جہاں مانگی ہے، جو مانگی ہے اللہ تو قبول فرما لے، ساری دعائیں قبول فرما لے، ساری دعائیں قبول فرما لے. اللہ جتنا قرآن پڑھا ہے، اے اللہ جتنا باقی ہے اللہ سب پڑھنے کو قبول فرما لے، جتنا ذکر کیا ہے، جتنی عبادتیں کی، میرے بولا ٹوٹی پھوٹی عبادت تو قبول کر، تو قبول کر، تو قبول کر. اے اللہ، جو مائیں اور بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہے ان کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ان کو عبادت کا ثواب نصیب فرما. یا اللہ عبادت کا ثواب نصیب فرما. اے اللہ، جتنے ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ سب کی عبادت کو قبول فرما، سب کو اعتکاف کا ثواب نصیب فرما. اے اللہ، سب کو لیلۃ القدر کا ثواب بھی نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ جو باتیں کہی ہے عمل، اے اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرما اور تو قبول بھی فرما. اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ریا کاری سے بچا لے. اے اللہ مجھے صحت کاملہ نصیب فرما، مجھے میری گھر والی کو صحت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ مجھے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کا کام کرتے کرتے میری روح نکل جائے. اے اللہ، اے اللہ ایسی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رات دین، دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، بچوں کو پڑھانے کی. اے اللہ اور لوگوں میں دینی تعلیم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. ماؤں اور بہنوں نے، بہت خدمت کی ہے اعتکاف والوں کے لیے، اور اسی طرح اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، افطاری کے لیے، سحری کے لیے. اے اللہ ان کی افطاری کو، سحری کرنے کو، کرانے کو قبول فرما، ان کو سب کا ثواب نصیب فرما، ان کو سب کا ثواب نصیب فرما. جنہوں نے سارے روزے دار کی خدمت کی ہے اللہ ان کی مدد فرما. ہمارے یعقوب بھائی پورا مہینہ ہمیں افطاری کرواتے رہے، اے اللہ ان کی گھر والی کو بھی عافیت نصیب فرما، یعقوب بھائی کو بھی عافیت نصیب فرما، ان کی روزی میں برکت نصیب فرما، ان کی اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو نیک اور صالحین میں سے بنا. اور ہمارے اقبال بھائی، ہمارے اشفاق بھائی، اور میرے جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، بہت سارے ہیں جتنے بھی خادم ہیں اعتکاف میں، کھلانے والے، پلانے والے، چاہے انہوں نے مجھے ایک کھجوری دیا ہو، چاہے مجھے ایک گلاس پانی ہی پلا دیا ہو، چاہے مجھے محبت کی نگاہی سے دیکھ لیا ہو، چاہے مجھے نیند سے اٹھا دیا ہو، اے میرے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت. اللہ اعتکاف میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما دے اللہ، تیرے گھر کی بے ادبی ہوئی ہو تو معاف فرما دے اللہ، تیرے گھر کی بے ادبی ہوئی ہو معاف کر دے اللہ. اللہ تو تیری رحمت کی طرف دیکھ لینا، ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا. اے اللہ ہمارے اعمال تو اتنے نہیں ہیں لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے. اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا، तेरी रहमत तो हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा है, और रहमतों का अर्जा इंदना मिन अमालिना, तेरी मगफिरत तेरी रहमत तो हमारे नेकियों के सामने बहुत बड़ी है। तो अपनी रहमत की तरफ निगाह करके आज के इस मजमे पर रहमत की निगाह डाल दे। अल्लाह यहाँ जितने मर्द बैठे हैं और जितनी माएं और बहनें बैठी हैं, तू एक अल्लाह एक निगाह डाल दे, अल्लाह एक निगाह डाल दे मेरे मौला, एक करम की निगाह डाल दे अल्लाह, काम हमारा बन जाएगा, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होगी, शैतान नाराज हो जाएगा, मेरा नबी राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, न मांग सके अपने फजल से करम से रहम से अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।